से प्रणाम है। मेरी माता सज्जनों आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना बहु बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। पिछले रविवार को जो चर्चा की थी थोड़ी सी चर्चा को याद दिलाते हुए साधु चलूं, परमेश्वर की करनी में कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए अपने लिए ये कहते हैं, जो परमात्मा को परम सुहित एकांगी उपकारी एकांगी प्रेमी मित्र, जो उसे ऐसा स्वीकार करता है, जो उसे ऐसा पहचानता है, वह शांति लाभ करता है। विद इमीडिएट इफेक्ट ये सब कुछ, जैसे ही भक्त ऐसा स्वीकार करता है, साधक ऐसा स्वीकार करता है, मेरे सिर पर मेरा साई बैठा है, मुझे चिंता किस बात की, तत्काल परम शांति को लाभ कर लेता है। उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उदासी मिट जाती है, बेचैनी उसकी दूर हो जाती है। वह सिर्फ एक ही चीज पर रहता है, मुझे सिर्फ चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी चिंता करने वाला कोई बैठा है। यदि परमात्मदेव उस दिन यमदूत की बात मान लेते, आपको याद है ना यमदूत क्या कहता था, क्या चाहता है? विधाता से यही चाहता है कि ये जो मरी पड़ी है, इसके साथ इसकी तीन पुत्रियां भी पड़ी हुई हैं, अभी दो घंटे पहले, एक घंटा पहले ही इनका जन्म हुआ है, यदि मैं इसकी आत्मा को आपके पास पहुंचाता हूं तो साथ ही साथ ये तीन पुत्रियों की मृत्यु हो जाएगी। अतः विधाता आप कृपा करो, करुणा वन परमेश्वर हैव मर्सी अपॉन अस ऑल, हमारे ऊपर करुणा दृष्टि डालो परमात्मा, इसको 10 वर्ष और आयु दे दो, तब तक ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी। ये अपनी फरियाद यमदूत परमात्मा के सामने जाके विधाता के सामने रखता है। तनिक विचार करो साधकों, हम तो यही चाहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वह परमात्मा करे। यदि परमात्मा ने ऐसा कर दिया होता, 10 साल तक उस वृद्धा को या महिला को आयु और दे दी होती, तो 10 साल के अंदर एक भिखारण की तीनों पुत्रियां भिखारण ही बनती हैं। लेकिन परमात्मा की प्लानिंग तो, उसकी योजना तो बड़ी भिन्न थी। उसने तो इन्हें एक सेठानी के घर पहुंचा के वहां पालन पोषण करवा के तो इन तीनों को सेठानियां ही बना दिया हुआ है। ये परमात्मा की योजना है। बदकिस्मती साधकों हमारी अज्ञानता, कहिए कुछ भी कहिएगा, ये है हम उसकी करनी को जान नहीं पाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उदास रहते हैं। कभी कभी भक्त बहुत प्यार से परमात्मा से कहता है, परमात्मा देव कैसे पता चले आप क्या चाहते हो, बताते क्यों नहीं? कभी कभी प्रेम में आके तो भक्त परमेश्वर से ये फरियाद करता है, यदि बता दो तो सारी उदासी चिंताएं इत्यादि सब खत्म हो जाए, मिट जाए। बताता भी होगा किसी किसी को, ऐसा नहीं कि वह बताता नहीं है। यदि कोई फरियादी सच्चा है, उसकी भक्ति ठीक है, सही है, निष्कपट है, निष्काम है, इत्यादि इत्यादि अनन्य है, तो वह बताने में कोई परहेज नहीं करता, ये मान के कि ये मेरा ही तो काम कर रहा है, ये सब कुछ अपने पास ही रखेगा, ढुंढोरा नहीं पिटाएगा कि मुझे इन बातों का पता है, मुझे इस बात का पता है। ये तो ऐसे ही रखेगा जैसे मैं गुप्त रखता हूं, वैसे ही ये गुप्त रखेगा। पर इसको बताने से कईयों का भला हो जाएगा, इसलिए वह अपने गुप्त भेद भी किसी किसी के साथ खोल देता है। ये परमात्मा की अनुकंपा है, ये उस भक्त की कोई महिमा नहीं है, परमात्मा की अहेतु की कृपा है उसके ऊपर कि वह ऐसा उसके साथ करने लग गया है। परम सुहृद है परमात्मा, ऐसी जानकारी साधकों हमें तुरंत परम शांति प्रदान करती है। साधकों ऐसा ना हो तो व्यक्ति क्या करे, एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, हमारे जैसा व्यक्ति जिनको परमात्मा की योजनाओं का कोई बोध नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, तो वह दुखी व्यक्ति क्या करे, वह असमंजस के समय क्या करे। राजा रघु हुए हैं प्रभु राम के पूर्वज, राजा दशरथ के भी पूर्वज, जिनके नाम से रघुकुल चला है। मन ही मन हुआ बहुत हो गया राजपाट, इस संसार में तो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से वासनाओं से घिरा रहता है, यह रह के काम नहीं चलने वाला। कहीं मुझे एकांत में जाना चाहिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आज सब कुछ अपने पुत्र को सौंप के, राज्य इत्यादि सब कुछ अपने पुत्र को सौंप के, तो किसी निर्जन स्थान पर जंगल में राजा रघु चले गए। वहां जाके तपस्या कश्यप आरंभ कर दिया है, कैसा जीवन होगा तनिक कल्पना करके देखिएगा। कहां राजसी जीवन, राज्य भोग, और कहां पता नहीं पत्ते मिलते होंगे खाने को, या कोई खाना कोई दे जाता होगा। परमेश्वर की बातें परमात्मा ही जाने, हम तो सिर्फ गैस ही कर सकते हैं कि राजा रघु की क्या हालत वहां होती होगी। रोज खाना मिलता भी होगा कि नहीं मिलता होगा, कैसे जीवन यापन होता होगा, सिर्फ साधना पर। कैसे जीवन यापन हो रहा है, सिर्फ साधना पर। एक बहुत उच्च कोटि के तपस्वी बन गए हैं राजा रघु, आज तपस्या में लीन है। तब क्या देखते हैं, एक विप्र एक ब्राह्मण भागते भागते आए हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए रघुराय, मेरी रक्षा कीजिए राजा रघु, मेरी रक्षा कीजिएगा। आप खुश, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। कहा, मेरे पीछे राक्षस बना हुआ है, वह मुझे खा जाएगा, मुझे बचाइएगा। आप निर्भय हो जाओ, बैठो आराम से, वह राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम मेरी शरण में आ गए हो, और तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा, आराम से बैठ। उतनी देर में हाफता हाफता राक्षस भी आ गया है। राजा रघु से कहता है, राजन ये मेरा शिकार है, इसे मेहरबानी करके मुझे लौटा दीजिएगा। नहीं, ये मेरा शरणागत है, ये मेरी चरण शरण में आया है, मैं इसे लौटाऊंगा नहीं। राक्षस कहता है, राजधीराज आप तपस्वी हो गए हो, अतएव निर्वैर हो, किसी के प्रति आपका वैर नहीं है, मेरे प्रति वैर क्यों। आप सब में परमात्मा देखने वाले हो, देखो साधकजनों, एक साधक के जीवन में, एक तपस्वी के जीवन में, एक संत के जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की चीजें आके तो प्रस्तुत होती है, कैसी समस्याएं प्रस्तुत होती हैं, लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं समझाने के लिए इत्यादि इत्यादि। ऐसी ही समस्या इस वक्त राजा रघु के सामने है। आप निर्वैर हो, आप सब में परमात्मा देखते हो, आप एक की तरफ रक्षा कर रहे हो और दूसरे की जान ले रहे हो, आपको पाप लगेगा। मेरा भोजन है, इसे मुझे दीजिएगा, मैं इसे खाऊंगा, आप इसे बचाइएगा मत, आपको पाप लगेगा, मैं मर जाऊंगा। राजा रघु सोच में पड़ गए। ये बात जो भी ये कह रहा है शास्त्र के अनुसार कह रहा है। ऐसे असमंजस में हम अनेक बार होते हैं, क्या करें। महर्षि विशिष्ट के सत्संग की बात बेटा याद आई। देखो सत्संगति सिर्फ इसी वक्त काम नहीं आती, सत्संगति जो कुछ सत्संग में सुना गया है, जो कुछ सत्संग में किया गया है, इनका प्रभाव बहुत देर तक रहता है, इनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। सत्संग के पड़े हुए संस्कार अमिट संस्कार कहे जाते हैं, कभी न मिटने वाले संस्कार कहे जाते हैं। महर्षि विशिष्ट गुरु महाराज की बात याद आई। ऐसे समय में मन जब धैर्य को नहीं पाके, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूर, चिंता मने चित चिंतन मूर्खा, स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में लिखा है। महर्षि विशिष्ट गुरु महाराज की बात याद आई। ऐसे असमंजस के समय में परमेश्वर के नाम का आश्रय लो। अपनी माला निकाली और राजा रघु ने माला जपनी शुरू की। राक्षस भी वही है, विपत्ति भी वही है। सिमरन आरंभ किया, किसकी प्रेरणा से? सत्संग की प्रेरणा से, गुरु महाराज की प्रेरणा से, सत्संग की प्रेरणा से। एक ही प्रेरणा मिलती है ना। सत्संग क्या कहता है बार बार? स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, क्या बार बार प्रार्थना करते हैं, क्या बार बार आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, क्या जो मर्जी शब्द प्रयोग करो क्या कहते हैं? यही ना, अधिक से अधिक सिमरन करो, अधिक से अधिक नाम जपो, सतत नाम जपो। और सत्संग से क्या मिलता है? घुमा फिरा के एक ही बात बार बार कही जाती है, सतत सिमरन करो, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, इत्यादि इत्यादि। माला निकाली, परमात्मा का नाम जपना, राम राम जपना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के नाम स्मरण के बाद, राजा रघु बड़ी विचित्र सी चीज देखते हैं। वे राक्षस, राक्षस नहीं रहा, उसकी आकृति बड़ी दिव्य हो गई है। उसकी आकृति, उसकी शक्ल, उसका आकार दिव्य आकार हो गया है, देवताओं जैसा आकार उसका हो गया है। वह राक्षस नहीं रहा, मानो उसकी राक्षस वृत्तियां सारी की सारी मर गई हैं। किस कारण? नाम जप के कारण। नाम जप वह नहीं कर रहा, रघुराज वह नाम जप कर रहे हैं। किसी के नाम जप से इतना प्रभाव कि उसकी राक्षस वृत्तियां खत्म हो गई। वह राक्षस राक्षस नहीं रहा, वह दिव्य आकार वाला बन गया। हाथ जोड़ के कहते हैं, राजन नाम का प्रताप, सत्संगति का प्रताप, मेरी राक्षस योनि खत्म हो गई। क्या बात है, कौन हो तुम? कहा, पिछले जन्म का राजा, कुछ ऐसे कुकर्मों के कारण मुझे राक्षसी योनि में आना पड़ा। आज राम नाम के प्रताप ने, भगवान नाम जप के प्रताप ने, सिमरन ने मेरी योनि काट दी। साधक जनों, हमारे पास इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। यदि आप चाहो कि आप परमात्मा से ही सब कुछ पाना चाहते हो, तो फिर सहारा उन्हीं का होना चाहिए, संसार का नहीं। आपको उस दिन भी कहा था, जो परमात्मा को छोड़कर संसार का सहारा लेते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। सकल दुखों का मूल है संसार का सहारा, परमात्मा के सहारे को छोड़ के। अतएव साधक जनों, हमारे पास परमात्मा की कृपा और परमात्मा की कृपा पर विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपको पुनः याद दिलाऊं, ज्ञान में चार पुरुषार्थ हैं, भक्ति के मार्ग में साधकों उन चारों पुरुषार्थों को कुछ नहीं कहा जाता, अलग रख दिया जाता है। भक्ति के मार्ग में एक ही पुरुषार्थ है, और वह पुरुषार्थ जिसे पांचवा पुरुषार्थ कहा जाता है वह है परमात्मा की करनी पर परमात्मा की कृपा पर विश्वास, ये भक्त का पुरुषार्थ है। एक राजा निसंतान है, संतान नहीं है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी संतान नहीं मिली, बहुत से सेवा के कार्य किए हैं अपने जीवन काल में, एक स्कूल भी है खुला हुआ अपना, आज उसके इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, जाके पूछा कोई मेधावी बालक यदि यहां हो तो वो मुझे बताओ, कोई बहुत होशियार बच्चा हो तो वह मुझे बताओ, मुझे केवल पुस्तक के ज्ञान का ही चतुर बालक मेधावी बालक नहीं चाहिए, वर्ल्डली वाइज ही नहीं चाहिए, मुझे मुझे अध्यात्मिक वाइज भी चाहिए, जिसके अंदर अध्यात्मिकता भी हो ऐसा बालक मुझे चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा हो हर चीज में अच्छा हो ऐसा बालक मुझे बताइएगा। प्रिंसिपल साहब ने एक बालक की ओर इशारा करके कहा, महाराज ये बालक बहुत अच्छा है, हमारा मन कहता है, हमारा हृदय कहता है ये बालक एक ना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, इसके अंदर सारे गुण दिखाई देते हैं, इसके अंदर सारे गुण हैं, पढ़ाई इत्यादि कैसे करता है। कहा, राजा साहब इसके मां बाप नहीं है, मां बाप छोटी आयु में ही मर गए थे, मानो स्कूल आते ही इनके मां बाप की मृत्यु हो गई, लेकिन ये मां बाप अपने पुत्र पर इतने अच्छे संस्कार छोड़ गए हैं, मैंने अपने कानों से इसे कहते हुए सुना है, मेरे माता पिता कहा करते थे बेटा हमारी मृत्यु के बाद किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां का राजा बहुत दयालु है, यहां का राजा बहुत प्रेमी है, बहुत करुणावान है, वह किसी को इस प्रकार निस्सहाय नहीं रहने देता, अतएव किसी भी प्रकार की चिंता न करता, छोटी आयु थी मां बाप मर गए हैं उसके बावजूद भी हमने कभी इसे चिंतित नहीं देखा, यही कहता था मेरे माता पिता मरते वक्त और उससे पहले मुझे यही कहा करते थे कि यहां का राजा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत करुणावान है, उसके होते हुए तुम्हें अपने पालन पोषण इत्यादि की किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल साहब ये सब कुछ राजा साहब को सुना रहे हैं, तब से राजा साहब हम सभी टीचर्स कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और इसकी फीस इत्यादि का होता है, इसके रहन सहन का, इसकी किताबों का खर्चा वर्चा सब कुछ हम ही देते हैं। राजा साहब ने उस वक्त हुक्म दिया, प्रिंसिपल साहब इसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आज से इसका सारा खर्चा राज्य से आया करेगा, अमुक स्थान पर इसके रहने के स्थान बनेगा, वहां रहा करेगा, पढ़ाई करे, फिर मिलेंगे। तो चर्चा भी सदचर यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे करके जारी रखेंगे। सदचरों अभी श्रीवास्तव जी जो भजन गाती थी यहां पर, अमेरिका में उनके दर्शन हुए थे, उन्होंने एक भजन सुनाया था, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, तू क्यों चिंता करे सबकी चिंता करे राम। अगले दिन जब मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा ये दो पंक्तियां प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभवन में लिख के लगवाई हुई थी, राजभवन में ये पंक्तियां लिखी हुई थी, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, तुम क्यों चिंता करे सबकी चिंता करे राम। ये पंक्तियां प्रवचन में भी बोली गई थी, मुझे लगा कि इन्होंने पंक्तियां सुन के तो रात रात में ही भजन बना लिया है, वे ऐसा करते हैं, स्वयं भजन भी लिखते हैं गाते भी हैं, अब सब रवि जी उनको जानते हुए श्रीवास्तव जी बहुत पुराने साधक स्वामी जी महाराज के वक्त के, मुझे कहने लगे नहीं मैंने रात को नहीं लिखा। सन 1959 में ये पहली बार ये भजन स्वामी जी को सुनाया था। उसके बाद 1968 में वो श्री प्रेम जी महाराज को सुनाया था। महाराज लुधियाना गए हुए थे, मैं भी वहां था, तो दूसरी बार भजन वहां सुनाया था। तीसरी बार अब 2011 में हम सब सुन के आए हैं ये भजन। सदक्षिणों, इस भजन का तात्पर्य भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो परम सुहित परमात्मा को परम मित्र परम स्नेही परम हितकारी, सब परम परम लगे हुए हैं साथ, परम हितकारी जो मानता है जो स्वीकार करता है वह परम शांति को लाभ करता है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।